आज कल
प्रिय श्रोताओं, कार्यक्रम आजकल में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम दाइश के मीडिया प्रोपेगेंडे के बारे में चर्चा करेंगे। मरियम मेहरदादिया और मोहम्मद मेदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
कुछ राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञों का कहना है कि दाइश ने मीडिया को युद्ध के हथियार के रूप में प्रयोग किया। इससे पहले दो कार्यक्रमों में हमने आपको इसी के बारे में संक्षेप में बताया था और आज के कार्यक्रम में भी हम इस आतंकवादी गुट द्वारा मीडिया को हथियार के रूप में प्रयोग किए जाने के विषय पर चर्चा करेंगे।
मीडिया विशेषज्ञों का कहना है कि जनवरी वर्ष 2015 में दाइश द्वारा जॉर्डन के पायलट को जलाकर मारने की घटना को बहुत ही बेहतरीन ढंग से 7 प्रोफेशनल कैमरों से फिल्माया गया था। इसी प्रकार इस घटना से पहले जून 2014 में इराक की स्पाइकर हवाई छावनी के कैडिटों के सामूहिक जनसंहार की ओर भी संकेत किया जा सकता है। इस घटना में दाइश ने सैकड़ों कैडिटों की हत्या करके उनके शव नदी में बहा दिए थे। अलबत्ता घटना यहीं पर नहीं रुकी और ये विषय मिस्र और लीबिया तक पहुंच गया और दाइश ने मीडिया प्रोपेगेंडा विभिन्न माध्यमों से शुरू कर दिया था और कुछ टीवी चैनल उसका अनुसरण कर रहे थे। दाइश अपने फोटोज और मीडिया के माध्यम से संपर्क बनाए हुए था ताकि स्वयं की समझ में अपनी सफलताओं को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सके और इसके लिए उसे कुछ खर्च भी नहीं करना पड़ता था। इस प्रकार से दाइश के विचारों के प्रचार व प्रसार में मीडिया एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे और दाइश ने अपना लक्ष्य जो प्रसिद्ध होना था प्राप्त कर लिया और लोगों के गले काटने और जिंदा जलाने की तस्वीरें उनके गर्व का कारण बन गईं।
अलबत्ता ये विषय केवल टेलीविज़न नेटवर्क पर ही निर्भर नहीं है बल्कि सोशल मीडिया ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, क्योंकि दाइश ने सोशल मीडिया को विभिन्न भाषाओं में अपने विचारों को फैलाने और विदेशी अनुयायियों को आकर्षित करने के लिए प्रयोग किया। यही कारण है कि बहुत से जवान यूरोप से लेकर एशिया तक इसी माध्यम से सीरिया और इराक तथा दूसरे देशों में इस गुट से जुड़ गए।
सऊदी अरब ने इराक और सीरिया में अपने पेट्रो डॉलर की तिजोरी इस गुट के लिए खोल दी और उसका केवल एक ही लक्ष्य था, वहाबी विचारधाराओं और लक्ष्यों को सफल बनाना। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार दाइश के पास मीडिया की नवीन तकनीकें कैसी पहुंची, इस बारे में ये कहा जा सकता है कि सऊदी अरब ने दाइश के मीडिया को सक्रिय करने में सहायता करने के लिए अपने टीवी चैनलों के कुछ विशेषज्ञों और इंजीनियरों को इराक के मुसिल शहर भेजा और फुरकान नामक दाइश की मीडिया संस्था की जिम्मेदारी स्वयं सऊदी अरब पर थी। इसी प्रकार दाइश से जुड़े मीडिया के प्रबंधक भी सऊदी अरब के सलफी थे क्योंकि वो ज़बरदस्त अरबी बोलते थे। उन्होंने अबू बकर अल बगदादी की खिलाफत को सिद्ध करने के लिए कई कार्यक्रम पेश किए और भाषण दिए।
कुवैत टीवी चैनल के पत्रकार और कार्यालय के प्रमुख अहमद सामी का कहना है कि एक फ़ोटो हज़ारों शब्दों का विकल्प है और कितना अच्छा हो कि हाथ में ऐसे फ़ोटो वीडियो और साधन हो जो अपने दृष्टिकोणों और आस्थाओं को फैलाने के लिए हो। इन हालात में विषय की व्याख्या की आवश्यकता होती है। ये ठीक उसी तरह की शैली है जिससे दाइश ने लाभ उठाया और कुछ संचार माध्यमों ने अनचाहे में ही सही दाइश की इस लक्ष्य में सहायता की। जैसा कि हम जानते हैं कि क्षेत्रीय देशों में मीडिया और टीवी चैनलों की संख्या कम तो नहीं है, ये मीडिया हर घर में प्रविष्ट हो गया और दाइश भी मीडिया द्वारा घरों में दाखिल हो गया।
मीडिया के क्षेत्र के शोधकर्ता का कहना है कि इस संबंध में कुछ संचार माध्यमों ने एक दूसरे से मुकाबला किया कि कौन मीडिया दाइश के अपराधों को सबसे पहले कवरेज दे रहा है और मामला यहां तक पहुंच गया कि दाइश की न्यूज़ एजेंसी अमाक की ओर से संचार माध्यम समाचारों की पुष्टि के लिए रुख करते रहे।
इस गुट ने वर्ष 2014 में एक कंप्यूटर गेम बनाया जिसमें दुश्मनों से मुकाबले के लिए सैन्य शैली को प्रयोग करते हुए दिखाया गया है। इस गेम का नाम सरील असवारिम रखा गया जिसका अर्थ होता है तेज धारदार तलवारें। इस गेम को प्रसिद्ध कंप्यूटर गेम GTA की तरह बनाया गया था जिसमें यूजर्स को धमाका करने, मोर्चा बनाने, हमला करने और फायरिंग करना सिखाया जाता है। इस गेम का हीरो दाइश का सदस्य है जिसके दुश्मन इराकी और अमेरिकी सैनिक बताए गए हैं।
उसी समय सऊदी अरब और फारस की खाड़ी के देशों के समाचार पत्रों ने ये समाचार बयान करते हुए कि इस गेम के बारे में विस्तार से अपने संस्करणों में छापा। सऊदी अरब के सांस्कृतिक मंत्रालय से जुड़े समाचार पत्र आजिल ने ये खबर प्रकाशित करते हुए लिखा कि ये गेम बनाने का लक्ष्य दाइश का मनोबल बढ़ाना, विरोधियों के दिलों में भय पैदा करना और पश्चिम से संघर्ष के लिए युवाओं और बच्चों को प्रशिक्षण देना है।
खेल एक वार्निंग लेटर से शुरू होता है, जो आप खेलेंगे वही चीज है जिसे हम वर्तमान समय में मैदान जंग में अंजाम दे रहे हैं। दाइश ने शार्ट एडवर्टाइजिंग फिल्म के माध्यम से इस गेम के कुछ भाग को इंटरनेट पर अपलोड कर दिया जिसका मुख्य उद्देश्य विरोधियों और पश्चिम के विरुद्ध लड़ने के लिए युवाओं और बच्चों में जोश भरना है। इस फिल्म में इन समस्त दृश्यों, शैलियों और कार्रवाइयों को दिखाया गया था जिसे दाइश अपने विरोधियों के विरुद्ध प्रयोग करता था। ये वीडियो गेम धमाकों, सैन्य टकराव और मोर्चे से फायरिंग से शुरू होती है और पूरे गेम के दौरान दाइश के सदस्यों की आवाज़ें सुनी जा सकती हैं। इस वीडियो में दाइश के एक सदस्य के विरोधी को कोड़े मारते हुए, सिर काटते हुए और गाड़ियों में धमाके करते हुए दिखाया गया है। पूरे गेम के दौरान दाइश के लोग दिखाई देते हैं और पूरे गेम में केवल जिहाद की बातें होती हैं।
इस आतंकवादी गुट ने मोबाइल के लिए भी एक फजरुल बशायर नामक ऐप्स भी बनाया है जो अरबी भाषा में था। इसे स्मार्टफोन्स पर अपलोड किया जा सकता है जो ऑटोमेटिक रूप से दाइश की समस्त खबरें यूजर्स तक पहुंचाता है। इस ऐप्स को प्रयोग करने के अतिरिक्त आप इसको दूसरों तक भेज सकते हैं और दूसरों को शेयर कर सकते हैं।
इस आतंकवादी गुट ने कंप्यूटर गेम और नई तकनीकों के माध्यम से बहुत अधिक संबोधक बना लिए और उसने इस तकनीक को अपने अपराधों का वीडियो बनाने के लिए भी प्रयोग किया। पिछले वर्ष भी आतंकवादी गुट दाइश ने लोगों के जनसंहार और इराकी सेना पर हमले के लिए फर्स्ट मैन कंप्यूटर गेम की शैली का प्रयोग किया। फलुजा की झड़पों के दौरान दाइश के एक व्यक्ति ने अपने हेलमेट पर कैमरा लगाकर इराकी सेना पर हमले को फिल्माया और कंप्यूटर गेम तैयार किया। ये वीडियो रण क्षेत्र और दाइश के सदस्यों की कुछ तस्वीरों के साथ शुरू होती है और झड़पों के आरंभ में ही इमारतों में धमाके और फायरिंग की फोटो दाइश के सदस्य के हेलमेट में लगे कैमरे से ली गई है।
मीडिया के क्षेत्र में दाइश की व्यापक गतिविधियों के कारण दुनिया के कुछ संचार माध्यमों के विशेषज्ञों ने इस गुट के अस्तित्व को दुनिया ही नहीं बल्कि मानवता के लिए खतरनाक बताया। उदाहरण स्वरूप पोलैंड के प्रसिद्ध नाट्य मंच निर्माता डिस्ट्रिक्टिव क्रिएशन ने वर्ष 2020 में यूरोप पर दाइश के हमले की सूचना दी। इस स्टूडियो ने वर्ष 2016 में एक कंप्यूटर गेम बनाया और मार्केट में भेजा और फिर उस पर राजनीतिक हलकों में चर्चा होने लगी। इस गेम का नाम IS डिफेंस है। इसमें वर्ष 2020 में अफ्रीका में दाइश की फतह और यूरोप पर उनके व्यापक हमले को फिल्माया गया है।
इस गेम में खिलाड़ी नेटो के सैनिकों के रूप में इस गुट के साथ युद्ध करता है और उसकी जिम्मेदारी स्नाइपर की होती है ताकि वो शहर और शहर के बाहर विभिन्न स्थानों पर दाइश की घुसपैठ को रोक सके। IS डिफेंस नामक फिल्म इस बारे में अच्छा और मजबूत गेम नहीं समझा जाता जिसमें बहुत सी कमजोरियाँ पाई जाती हैं, किंतु ये गेम ये बताता है कि मीडिया कुछ गुट से कितना भयभीत रहता है।
रेस्ट्रिक्टिव क्रिएशन के प्रबंधक जारुस्ला ज़ेलेंस्की पोलैंड की पत्रिका गुड्स ज़िमिनी से बात करते हुए कहते हैं कि मैं समझता हूं कि दाइश यूरोप में निश्चित हमला करेगा और ये जल्दी होगा। वे मध्य पूर्व युद्ध से थक गए हैं। हमले और कब्जे के लिए यूरोप उनके लिए सरल लक्ष्य होगा। वर्षों से अमेरिका उत्तरी कोरिया और ईरान को यूरोप के लिए सबसे बड़ा खतरा बताता रहा है, जबकि सबसे नया खतरा तो दाइश है, न ये देश।
ये बात सही है कि इस वीडियो गेम में यूरोप पर दाइश के हमले के समय का निर्धारण बहुत से लोगों के हिसाब से एक अनुमान है, किंतु समय बीतने के साथ साथ ये सिद्ध हो गया है कि दाइश यूरोप के लिए भी गंभीर खतरा है। और वर्ष 2020 से पहले तक ये आतंकवादी यूरोपीय मीडिया में दिखाए जाने से पहले ही सड़कों पर दिखाई दिए।